बहुत कम उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया। कम उम्र में ही सपनों के टूटने का एहसास भी देख लिया। अपने आंसू छुपाकर दुनिया को हंसाने का हुनर भी कम उम्र में ही सीख लिया। जिंदगी के कई गहरे राज मुश्किल हालातों ने कम उम्र में ही जता दिए। लेकिन इन्हीं संघर्षों और इनसे हार न मानने वाली फितरत ने अमित भड़ाना को बहुत कम उम्र में ही देश के सबसे सफल यूट्यूबर्स की कतार में ला दिया। आप अमित भड़ाना के यूट्यूब वीडियो देखते हो या ना देखते हो, उनके जीवन के सफर की कहानी जरूर देखिए। जीवन का फलसफा छुपा है इस कहानी में। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में।
नमस्ते ऋचा जी।
यूट्यूब चैनल, कभी सोचा था कि इतने बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे आप देश के, कि 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे? जो छोटा बच्चा अमित भड़ाना था, उसने कभी सोचा था आज इस मुकाम पर होगा वो?
नहीं, ऐसे सोचा तो नहीं था। और मुझे लगता है सोच के काम होते भी नहीं है ज़्यादा, प्लानिंग से नहीं हो पाती ज़्यादा चीज़ें। मतलब लोग काफ़ी विश्वास रखते हैं प्लानिंग में, कि प्लानिंग से चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एक सेटलमेंट के बाद प्लानिंग अच्छी लगती है। शुरू में तो मौज मस्ती में ही चीज़ें शुरू होती हैं, तो मतलब सोचा तो नहीं था मैंने ऐसा कुछ।
चलिए एक बार, वैसे जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिनको नहीं पता, उनके लिए एक बार आपके चैनल से जुड़ी उपलब्धियां बता दें। जब से शुरू हुआ, क्या क्या माइलस्टोन्स आप अचीव कर चुके हैं पहले ही?
मैं ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखता कि मैंने क्या अचीव किया है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि हमने क्या किया है। तो जो मैंने और मेरी टीम ने हमने अचीव किया है, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि मैं भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर था जिसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे। और फनी वीडियोस पर कभी इतने लाइक्स नहीं आते थे इंडिया में, फनी वीडियोस पर, गानों पर आते थे। तो पहला यूट्यूबर था जिसके 1 मिलियन लाइक्स हुए थे। तो ये वो उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मुझे अपनी दादा साहब फाल्के लगता है, जो मुझे अवार्ड मिला था दादा साहब फाल्के, तो वो मुझे बहुत बड़ी एक अचीवमेंट लगती है। मैं काफ़ी मतलब खुश हुआ था जब मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो ये उपलब्धियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब आरंभ है, अभी शुरुआत है। मैं इनको इतना उपलब्धियों में गिनता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, जो मुझे मिल रहा है, ऊपर वाले ने हाथ पकड़ रखा है, लेकिन अभी मुझे करना है, अभी ये शुरुआत है।
तो YouTube चैनल कब शुरू हुआ था आपका?
मैंने मार्च 2017 में इसको शुरू किया था।
तो मतलब अभी 4 साल हुए हैं, और 4 साल में इतना सब कुछ आप अचीव कर चुके हैं। ये अच्छी बात है कि आप उसको भी उतना अचीवमेंट मानना नहीं चाहते
जी।
लेकिन 4 साल वाकई बहुत कम वक्त होता है। एक बात आज मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी अमित, मैं डिजिटल मीडियम के स्टार्स को, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू करने से हमेशा थोड़ा बचती रही हूँ, क्योंकि भाषा आजकल जो कंटेंट की हो रही है, वो मेरे लिए थोड़ा हमेशा से एक कंसर्न रहता है। लेकिन जब आपके बारे में पढ़ रही थी, लोगों से बात कर रही थी, तो मुझे बताया गया कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने वीडियोज़ में गाली का इस्तेमाल नहीं करता। काफ़ी इम्प्रेस भी हुई मैं ये सुनकर, लेकिन हैरानी भी हुई, क्योंकि आजकल ना जो एक धारणा बन गई है कि आपको अगर अपने कंटेंट को बहुत हिट कराना है, वायरल कराना है, तो उस तरह की भाषा थोड़ी होनी चाहिए। तो कैसे ये 4 साल में आप ये चीज़ मेंटेन कर पाए?
क्या होता है, जब मैं आया था ना, तो मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ था, खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अब ये सब थोड़ा, ये संस्कारों पर भी बहुत कुछ होता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मैं दोस्तों में बैठता हूँ तो मैं गालियाँ नहीं देता, या मैं उस तरह की बातें नहीं करता जिस तरह के आजकल लड़के करते हैं।
हाँ।
मैं सब वही बातें करता हूँ, क्योंकि ये सब समाज है, सोसाइटी है। यहाँ पर अगर इस कमरे में जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, 8 लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच का दायरा है। तो मैं करता था, लेकिन मैं कैमरे पर घबराता था, क्योंकि मैं सोचता था मेरी मम्मी देखेंगी तो कहेंगी ये तो क्या कर रहा है। चाचा जी से मैं बचपन से बहुत डरा हूँ, क्योंकि उन्होंने बस सुताई करी है मेरी हमेशा से ही, तो मैं बहुत डरता था। मैंने कहा नहीं, वो देखेंगे तो इस वजह से मैंने ज़्यादा अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया अपने चैनल पे।
ज़्यादा अभद्र भाषा?
हाँ, मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाता है। जैसे मैं अपने दोस्त को बोल देता हूँ कुछ, कि अबे कॉकरोच से मुँह के, या ये वाला थोड़ा बहुत चल जाता है, ये आपस में थोड़ा चल जाता है। थोड़ा जो वीडियोस में जो लड़कियां होती हैं मेरे साथ, उनसे थोड़ा हंसी मजाक करना, वो एक कॉमेडी है, वो भी एक समाज का ही दायरा। वो भी मैंने समाज में ही सीखा है, तभी तो मैंने समाज से देखा है, सीखा तो नहीं कहूँगा मैं, देखा है, तभी मैंने वो वहाँ पर अप्लाई किया अपनी वीडियोज़ में। तो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा ये हो जाता है कि लोग जब मैं किसी को देख रहा होता हूँ तो वो गाली वाली बात पर बहुत जल्दी हंसते हैं, एक साधारण सी बात पर हंसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाली को गाली ऐसे लगता है कि हंस गए, एक गाली सुनी और हंस गए, लेकिन साधारण कोई भाषा, साधारण कोई बात बोली जा रही है तो उसको समझते हैं फिर हंसते हैं, तो थोड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा भी क्या है इंसान जो अपने स्टैंड से डगमगा जाए ना, अपना ये स्टैंड है कि नहीं करेंगे कभी तो नहीं करेंगे।
ये पहले दिन से था मन में?
हाँ जी, ये पहले दिन से था, ये सोच के नहीं था, लेकिन
अच्छा
बस मेरा स्टैंड था। मैं काफ़ी प्रिंसिपल वाला बंदा हूँ कि अगर मैंने लाइफ में कुछ बना लिए, जैसे कि अपना बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं जाता, अगर मैं दोस्त के घर में गया तो दोस्त की बहन को बहन बोलना, आंटी जी, मतलब वो मैं खिलाफ, मैं ऐसे नहीं कि किसी से ओवर फ्रैंक हो रहा हूँ या कुछ भी, मैं अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलता हूँ कि मुझे ये नहीं करना तो मुझे ये नहीं करना, मुझे परफेक्ट कोई काम करना है तो 10 दिन लगे 20 दिन लगे, लेकिन चाहिए वही जो मैं चाहता हूँ। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं ऐसा कंटेंट बना सकूं। अच्छा, कंटेंट क्या है कि आप बनाना किस तरह का चाह रहे हैं, मैं हमेशा से वो चाहता हूं कि मैं आगे का कंटेंट बनाऊं कि कल को मेरे बच्चे भी देखें ना तो वो निराश ना हो, वो ये ना कहें कि आप क्या करते
क्या
थे, आप इन वजह से फेमस हुए थे क्या। जो गाली वाला कंटेंट बनाते भी मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी करता हूँ, ठीक है, वो सबका अपना अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, सबका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना अधिकार है सबका। तो मैं हमेशा फ्यूचर के हिसाब से कंटेंट बनाता हूँ कि आगे आने वाला टाइम देखे तो चाहे आने वाली जनरेशन कैसी भी रहे, कितनी भी वो चेंज हो जाए, शायद मैं उनके लिए असाधारण भी रह जाऊँ कि ये क्या था, ये ऐसा भी होता था कभी, आजकल तो स्लैंग बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वो मैं भी स्लैंग बोलता हूँ लेकिन मैं देसी वाली स्लैंग बोलता हूँ, जैसे कोई लड़की बोलता है तो मैं लोंडिया बोलता हूँ, लोंडा, वो वाली स्लैंग जो वो ये पर
जो कुछ लोगों को शहर में बैठे लोगों को खराब लग सकती है लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता शायद कि गांव में या अपने इलाके में ये नॉर्मल
बोली जाती है, ये काफी
हमारे बुंदेलखंड में मोड़ा मोड़ी बोलते हैं।
अच्छा अच्छा, हाँ, ये जैसे आप कहीं अलग अलग जगह जाएंगे तो छोरा छोरी, हरियाणा में छोरी, अरे छोरी कित जा रही है, ये हरियाणा में बोला जाता है। तो पता नहीं क्या सवाल था, कहाँ कहाँ क्या क्या
नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, बोलिए। लेकिन एक चीज़ और होती है अमित, कई बार हम देखते हैं जैसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया तब आदर्श की बातें अच्छी लगती हैं, तब लोग बोलते भी हैं कि अरे आज कर सकते हो, लेकिन जब शुरू हुआ था है ना 20 सब्सक्राइबर 50 सब्सक्राइबर 100 150 से 1000 जब अचीव कर, उस समय बहुत प्रेशर होता है, उस समय बहुत लोग ये सिखाने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं, अरे भाई कॉमेडी का कंटेंट है, देसी टाइप दिखा रहे हो, लोकल दिखा रहे हो, डाल दो चार गालियां। प्रेशर तो मुझे लगता है इंसान का, जिस समय इंसान की पहचान होती है वो सबसे जरूरी होता है, उस वक्त भी क्या कभी ये टेम्पटेशन नहीं हुआ कि कर
देते हैं? नहीं, मैं कभी शॉर्टकट पे जिया ही नहीं, मैंने मेरी मम्मी जी हमेशा कहती हैं कि तू बड़े दीन ईमान वाला आदमी है, वो हमेशा बोलती है कि तेरा दीन ईमान ही तेरे को किसी दिन, तुझे लगता है कि तू दीन ईमान से बहुत कुछ कर लेगा लेकिन ये तुझे काफ़ी हानिकारक रहेगा क्योंकि तू अड़ता है चीज़ों पर, तू रास्ता शॉर्टकट नहीं अपनाता। मैं कभी शॉर्टकट नहीं अपनाता, मुझे ज़िंदगी में मतलब ऐसी भी क्या मसूरी कि किसी को बुरा बोल के आप वो हासिल करें, तो मुझे ऐसी मसूरी कभी नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसी कोई वार्तालाप नहीं चाहिए थी जिसमें जो लोगों
जो एक फैमिली साथ बैठ कर
ना देख सके। तो प्रेशर तो कभी नहीं था मुझे, लोग बोलते थे कि ये चीज़ें इन चीज़ों से अट्रैक्ट जल्दी होते हैं, मैंने कहा हम वो करके दिखाएंगे, कुछ अलग करेंगे हम, क्योंकि किसी को तो खड़ा होना होता है ना दिखाने के लिए कि देखो हम होते हैं खड़े, हम अलग भी कर सकते हैं, आप ये कर रहे हैं हम ये करके भी पहचान बनाएंगे। दो तरह के वर्ग हैं कि कोई गाली गलौच वाला कॉन्टेंट देख रहा है, कोई बिना गाली गलौच वाला, गलत कोई भी नहीं है, वो भी एक समाज का हिस्सा है, ये भी एक समाज का हिस्सा है, आप किस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ लेकिन मैं इनके खिलाफ भी नहीं हूँ, एक की तरफ होना दूसरे को खिलाफ नहीं करता।
सही बात
जी, तो शॉर्टकट नहीं चाहिए जिंदगी में, कभी भी नहीं चाहिए, अगर आपके पास सुविधाएं हों या ना हो लेकिन शॉर्टकट में जीवन नहीं जा सकता ठीक से।
चलिए अब आपकी ज़िंदगी बचपन से शुरू से बात शुरू करते हैं, और मैंने आपका एक रैप वो देखा वीडियो जिसमें आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का लगभग कहानी बता दी है, बट उसको एक एक स्टेप पर लेकर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप एक अस्पताल में हैं और उस वक्त आपने ये फैसला किया कि आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे, वो क्या घटना थी?
वो कहानी जो हॉस्पिटल की मैंने दिखाई थी ना, वो ये थी कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर, मैंने यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया था तब मेरी सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम पे मुझे सच में ऐसे लगता था एक टाइम पर कि मैं शायद अब वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत लड़ना पड़ेगा लाइफ से।
क्या हुआ था आपको?
मेरे को ब्लैक होल था यहाँ पे, मतलब एक वो रहता है ब्लैक कलर का एक निशान था, काफ़ी टाइम से था वो जो था, तो उसमें हल्का हल्का सा ना मेरे को छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी उसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी मैंने उस टाइम पर सर्जरी कराई थी। तो उस सर्जरी के बाद मुझे ऐसे लगता था कि अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा लाइफ में, मेरे को लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए मैं तैयार था, लेकिन मुझे रास्ता पता होना चाहिए। एक एक जिसने शुरुआत ही अभी 12 महीने में करी है, उसे क्या पता कि कैसे वापस होता है। अब भाई आप किसी फील्ड में 6-7 साल से हैं तो आपकी PR भी होती है, आपके आसपास लोग होते हैं, वो आपको समझाएंगे बताएंगे। मेरे पास कोई था नहीं, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते थे लोग, भाई कर सकते हो आप, कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ऐसे बोलने से ना कि कर सकते हो, उससे काम नहीं चलता।
मतलब तब तक शुरुआत कर दी थी आपने?
अब मैंने शुरुआत कर दी थी, तो वो मैं हॉस्पिटल में तब होता था, मैं एडिट करता रहता था ऐसी, तो वो सीन मैंने ऐसा दिखाया कि डॉक्टर ने मुझे पहचाना था कि अरे आप अमित हो, मैं वीडियोस देखता हूँ, मेरी लड़की है और लड़के आपकी वीडियो देखते हैं। तो वो एक सीन है जिसमें डॉक्टर ऐसे करता है, तो वो ये था कि डॉक्टर भी कह रहा था कि यार मुझे तेरी वीडियोस बहुत पसंद है, लेकिन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मेरा ऐसे ही रहा, मुझे फिर पथरी हो गई, और पथरी वो वाली हुई कि एक होता है कि दवाई से निकल सकती है, लेकिन एक होता है जो ऑपरेशन से ही निकलेगी। वो दर्द ही नहीं रुक रहा था और मैं इंडिया से बाहर था, तो मेरी लगातार इतनी सर्जरी हुई, लगातार मैं इतना
कम उम्र भी थी,
कम भी था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे को करना क्या है, चीजें क्या है। लेकिन वही है, मैं सोचता हूँ कि देखो साधारण चीजें चलती रहे उसमें मजा नहीं है। ऊपर वाला कहता है देख अगर मैंने 135 करोड़ लोगों में से तुझे एक पोजीशन दी है जहां पर तू है, तो कुछ तो तुझ में बात होगी ना, वो अब उसको प्रूफ कर। अब तू प्रूफ कर कि मैं सही था कि तुझे मैंने जहां पर बिठाया है। तो मुझे ऐसे ही लगता है वो मेरी परीक्षा थी। जब आप स्कूल और कॉलेज में होते थे तो हमेशा पेपर होते थे, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो तो आप फ्री हो जाते हैं। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं उठूंगा अपने हिसाब से करूँगा, भगवान कहता रुक, चलेगा सर्कल वैसे ही, फर्क इतना इस बार पेन और कॉपी नहीं रहेगी तेरे हाथ में, आंसर शीट नहीं रहेगी तेरे हाथ में, ना तेरे को पता है कि तेरा क्वेश्चन पेपर क्या है। तेरी ये परीक्षा है, दे अपने हिसाब से, अपने तरीके से दे। तो हम सोचते हैं ना जिंदगी आसान, आदमी सोचता पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, अब मजे करेंगे। भगवान आपको अंदरूनी तौर पे परीक्षाएं देता रहता है, कभी पारिवारिक, कभी शारीरिक, कभी दिमागी तौर पे, वो तरीके तरीके से आपकी परीक्षाएं लेते रहते हैं। तो लेकिन लड़ना चाहिए, लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से ही नहीं लड़े, आप कभी भी ना सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपने आप से। अगर आपने अपने आप को ये बोल दिया कि
बस
कि हो गया काम,
हो गया कर लिया,
तो ख्वाब टूटते रहने चाहिए। अगर आपके ख्वाब नहीं टूटेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्या चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या सोच सकता था एक टाइम पर आके कि मुझे बहुत फेमस होना है, हो गया, फिर अब क्या करूं, अब रजाई ओढ़ के सो जाऊं, नहीं है ना। कुछ टूटेगा फिर कुछ जुड़ेगा,
कुछ नया होगा,
धीरे धीरे बुनेंगे, कुछ सपने बुने जाएंगे, चीजें बुनी जाएंगी। तो लड़ते रहना चाहिए, लड़ने की क्षमता ना होनी चाहिए इंसान के अंदर, बहुत जरूरी है। अगर लड़ लेगा तो बहुत चीजें अपने आप दूर हो जाती है। अपने आप से ही तो लड़ना, दुनिया से थोड़ी ना लड़ना है ना। लड़ने पर आपकी पुलिस कंप्लेंट हो रही है ना, किसी के मम्मी पापा घर पे आ रहे हैं हमारा लड़का पीट दिया है ना, अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो,
अपने आप उसी से जीतना है,
अपने आप से ही जीतना है।
लेकिन आपकी ये लड़ाई और आपकी ज़िंदगी के इम्तिहान बहुत कम उम्र में शुरू हो गए, और मुझे लगता है शुरुआत तब हुई जब आपने अपने पिता को खोया। क्या उम्र थी आपकी और उसके बाद क्या हालात रहे घर के, परिवार के?
मैं बहुत छोटा था, मैं 6-7 साल का ही था, तो तब मैंने पिताजी को अपने खोया। मुझे उससे ज़्यादा जो एक चीज़ है जो दिल से, जब मैं समझदार हुआ, जब मुझे पता लगा, तो मुझे तो कुछ चीज़ का होता है कि मेरे जो पिताजी के भी पिताजी थे, तो जब मेरे पिताजी भी 5-6 साल के थे तब उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। मेरे दादाजी मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, हाँ जी, तो उनका भी देहांत हो गया। तो ये मैं एक नसीब मानता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी पीड़ा की बात है कि मेरे पिताजी ने भी
वही संघर्ष
अपने पिताजी को नहीं देखा, और वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मैं भी वो नहीं कर पाया चीज़ ना, मेरे को भी नहीं पता कि एक, देखो कहते हैं कि माँ माँ होती हैं जो वो संभाल लेती हैं, माँ ने संभाला सारी चीज़ें करा, पिताजी की अपनी जगह है। उनके रिश्ते को बहुत लोगों ने अंडररेटेड कर दिया, उनको नहीं समझ पाते लोग, जिनके नहीं है वो बहुत अच्छे से उसको समझ पाते हैं।
अपनी लाइन अपने गाने में रैप में डाली है कि उनसे पूछो जिनके,
हाँ उनसे पूछो, क्योंकि एक आप जब स्कूल में होते हो और बहुत छोटे होते हो, तो जब कोई आपसे ये कहता है कि मेरे पापा आएंगे कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो आपको फील होती हैं बहुत सारी चीज़ें ना, है ना, तो वो एक बहुत दुखद चीज़ें होती हैं जो मन में मेरे हमेशा वो पेन रहता है एक। मैं कभी दिखाता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरे आगे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं मेरे जरिए, अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गया तो कड़ी टूट जाएगी। पिताजी की कमी हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगी, मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ अभी जिसके, कभी भी मुझे हमेशा उनकी याद आती है।
कुछ यादें होंगी क्योंकि इतने छोटे थे आप, मन में कुछ कुछ भी याद है आपको?
यही मेरे को यही सबसे बड़ी एक मेरा दुख है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, छोटा था, और छोटी छोटी चीज़ें याद है ना, वही घुमाना साइकिल चलाना, वो बहुत छोटी चीज़ें जो मेरे को लगता है कि कम है मेरे लिए, मेरे जीवन में उनका महत्व वो बहुत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, मुझे पता होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे वो पिताजी वाला तरीका नहीं पता कि आप जब 10 साल के होते हो तो पिताजी आपको कैसे ट्रीट करते हैं, 15 साल के होते हो तो कैसे करते हैं, 20 साल के होते हैं, नहीं मैंने वो जीवन ही नहीं जिया, मुझे पता ही
वो
नहीं,
एक कमीर,
वो एक कमी रही है। अब पता नहीं मैं जब बड़ा होऊंगा, जब मैं अपने बच्चों को जब मैं कर रहा हूँगा उस तरीके से ट्रीट समझ रहा हूँगा, तो शायद मैं थोड़ा रिलेट कर पाऊँगा कि क्या वो होता है, लेकिन कमी हमेशा रहती है।
लेकिन कहीं ना कहीं पिता का जो मार्गदर्शन या जो डांट डपट सब कुछ होती है, वो जगह चाचा ने लेने की कोशिश की है?
हाँ जी, हमेशा चाचा जी ने बहुत संभाला, वही चीज़ें करी चाचा जी ने, मतलब मैं हमेशा से सुनता था कि चाचाओं ने प्रॉपर्टी हड़प ली, चाचाओं ने परेशान कर दिया, चाचाओं ने ये कर दिया, मेरे साथ अलग ही था, मेरे लिए तो बिल्कुल वो एकदम बहुत महान, उनका चरित्र है मेरी नज़रों में तो बिल्कुल महान इंसान है वो, जो उन्होंने किया मेरे लिए वो शायद ही कोई करता या सोच ही नहीं सकता, अपने बच्चों के बारे में भी इतना नहीं सोचा वो, तो उन्होंने रिश्ता निभाया, चाचा भतीजे का नहीं निभाया, उन्होंने भाई का रिश्ता निभाया, तो इसलिए मैं रिश्तों में बहुत विश्वास रखता हूँ, कि क्योंकि मैंने घर में ही सीखा है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, तो रिश्ते निभाने बहुत ज़रूरी है।
कहाँ पले बढ़े आप, ये सब बचपन कहाँ बीता आपका?
शुरू के 5 साल बुलंदशहर में।
ओह
हाँ जी, फिर बुलंदशहर के बाद दिल्ली में मेरी हुआ स्कूलिंग, मैंने दिल्ली से की, कॉलेज मैंने दिल्ली से किया, ग्रेजुएशन वकालत मैंने गाजियाबाद से करी, ग्रेटर नोएडा से मेरी दादी थी। हाँ जी, तो ग्रेटर नोएडा मेरा बहुत आना जाना था बचपन में, रेल से आता था मैं दादी के साथ, सादरा से अजायपुर रेल पकड़ता था, उनके साथ ही आता था जाता था, चाचा जी काफ़ी प्रेशर में रखते थे डांट के धमका के, तो मुझे रिलीफ मिलता था जब छुट्टियां मिलती थी, तो दादी कहती थी मेरे साथ मेरे गांव चलेगा, तो बुज़ुर्ग भी थी तो कोई साथ भी चाहिए होता था, तो मैं जाता बड़ा खुश होता था मैं, मुझे आज भी याद है सुबह सुबह उनका झोला उठा के मैं ऑटो पकड़ता था, ऑटो में उन्हें बिठाता था, उनसे सारे पैसे ले लेता था कि तुम्हारे गिर जाएंगे, फिर उसमें से पैसे उड़ाता था, जैसे 100 रुपये मिल गए तो 10 रख लेता हूँ अपने बचा के, बोल देता था कि गोल चक्कर से सादरा उसने 20 रुपये ले लिए, दादी हिसाब की बड़ी पक्की थी कि 5 रुपये लगते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं 20 रुपये लगते हैं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो मैं 10 उनमें से उड़ा।
क्या उम्र थी आपकी?
बच्चा था मैं, स्कूल में था, तो 12th में 11th में 10th में इन्हीं में थे, 10 रुपये बहुत वैल्यू रखते थे, अगर आप 2010-11 में पहुँच जाएंगे जबकि मेरी स्कूलिंग थी, तो बहुत वैल्यू रखते थे 10 रुपये, तो मैं वही बचा के रख लेता था, फिर मैं गांव में जाता था तो वहाँ पर रहता था, तो वो छोटे छोटे कोई काम दिया करते थे तो उनमें से भी पैसे इधर उधर कर देता था, इकट्ठे कर देता था 20 रुपये, फिर मैं स्कूल में जाके उनसे ऐस उड़ाता था, छोले कुलचे खा रहा हूँ, भटूरे खा रहा हूँ, तो यही ऐस होती थी, कुछ और ऐस नहीं होती थी। मुझे पता था 200 रुपये मैं टी शर्ट के लिए इकट्ठे कर नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, तो खाने
तो
में ही
खा पी लो।
तो खाने पीने में मैं बहुत कर देता था। तो जो मेरा बचपन बीता वो ऐसे बहुत उसमें बीता, मैंने दुख वैसे काफ़ी देखे अपनी फैमिली में ना।
मैं वही पूछने वाली थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।
हाँ, आर्थिक स्थिति ये था कि चाचा जी ने कभी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन हो जाता है आपको ना जब आप एक सोसाइटी में रह रहे। समाज ने हमें ऐसा, समाज ने हमें बहुत बिगाड़ रखा है। समाज हमें ही बताता है आप गरीब हो, समाज ही हमें बता देता, वरना मुझे तो रोटी मिलती थी सुबह भी शाम भी, कपड़े भी मिलते थे, मैं स्कूल ड्रेस, प्रॉपर स्कूल ड्रेस में घर जाता था, मैं सारी की सारी चीज़ें करता था ना। लेकिन सोसाइटी ने मुझे बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, क्योंकि आपके पास बड़ी वाली कार नहीं है, है ना, क्योंकि आप प्राइवेट
पिता नहीं है पैसे कमा के लाने।
हाँ जी, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते आप, सरकारी में पढ़ते हो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ शायद है वो आर्थिक स्थिति, वरना खाना तो हमेशा ही मिला ना, चाहिए ही क्या होता है इंसान को,
सर के ऊपर छत, पहनने को कपड़े और खाना।
हाँ जी, तो यही चाहिए होता, वो सब था, लेकिन महसूस कराया गया हमेशा कि वो नहीं है। तो मैं उसी में रहा, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन तो मम्मी की तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद रहता था हमेशा ना। और हमेशा मैंने ज़िंदगी का एक ही एम रखा है कि मुझे जो करना है उनके लिए करना है, मैं नाम करूँगा तो मैं उन्हीं उन्हीं के उस पर करूँगा। इसलिए मैंने कभी ज़िंदगी में हमेशा जो भी रखा उनको सोच के किया, मैंने हमेशा उनको ऊपर रख के कि आप हो मेरे लिए और आप हमें, वो मैं बताती नहीं है कभी कि मुझे तेरे पे प्राउड फील होता है, लेकिन मुझे पता है होता
है। बट अमित, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि समाज हमें एहसास कराता है कि तुम गरीब हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग ये सुन रहे होंगे, जब बहुत सारे बच्चे जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, कोई एक इंसिडेंट सबसे बचपन का जिस दिन आपको वाकई लगा हो कि आपको ये जताया गया कि तुम्हारा स्टैंडर्ड नीचे है, या तुम गरीब हो, या तुम इस लायक नहीं हो, कोई चीज़। कई बार क्या होता है, बुरी यादें मन में रह तो जाती हैं, आप कितना भी सोचें।
रिश्तेदार ही जता देते हैं, रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं, ये रिश्तेदार है ना जो, ये ना मैं कहता हूँ ना कि इनको एक जगह, मतलब एक प्लेन में बंद करो सबको, छोड़ाओ कहीं ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल डेमोक्रेसी ना हो, जहाँ इन्हें बोलने की आज़ादी ना मिले।
सीरियस बात पे भी आपने कॉमेडी कर दी,
क्योंकि इनको यही, आपके पास जब आते हैं तो आपको महसूस करा देते हैं, कभी आपको बोल देते हैं कि हमसे पैसे ले रखे हैं तुमने, कुछ भी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। तो रिश्तेदार बहुत होते हैं, मतलब रिश्तेदार आपको घाव देते हैं, अब अपना टाइम है उनको दाव दिखाने का। तो अब
कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे बचपन में?
मतलब मैं बता दूंगा, वो देख रहे होंगे फिर तो उनको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं उनको बताना नहीं चाहता कि मैं अब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो मैं सोचता ही नहीं उनके बारे में। उनकी इच्छाएँ हैं कि मैं उनकी शादियों में जाऊँ, उनके घर में उनके वो फोटो कराएं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये समय है, समय का खेल है, आज आप कम से कम मेरे काम की वजह से मेरी माँ को, मेरी फैमिली को इज्जत तो दे रहे हो ना, जो आपने कभी दी नहीं थी जी।
और ये बैट तोड़ने वाला किस्सा कब हुआ था? क्रिकेट का बहुत शौक रहा आपको बचपन में?
हाँ जी, मैं सचिन तेंदुलकर, रोबिन सिंह, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इनको देखकर ही पला बड़ा हूँ, मतलब मेरे, मैं जब था
पूरी पीढ़ी
वही 90s वाला ही मैं बच्चा हूँ। तो जब मैं इनको देखता था तो अब पता नहीं होता ना आपको 10 साल में क्या करना है। कोई मुझे कह देता था तू डांस अच्छा करता है, तो मैं डांस वाले टीवी देखने लगता था, कोई कहता था सिंगिंग। इसलिए मैं कहता हूँ सपने टूटने बहुत ज़रूरी हैं। शायद मैं इतना अच्छा क्रिकेटर ना बन पाता जो आज मैं कर रहा हूँ, मैं कम से कम खुश हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। सपने टूटे वो, फिर मैंने एक कुछ और नया बुना, मैंने वकालत भी चाही, वो भी चाही, सपने टूटते रहेंगे, ज़िंदगी अच्छी चलती रहेगी। लोग बुरा मान जाते हैं, कहते हैं यार मैं ये करना चाहता था नहीं कर पाया, समय तो दे, समय को थोड़ा समय दो।
लेकिन चाचा ने बैट तोड़ा था, उसके बाद आपने क्रिकेट, आपका खेलना बंद हो गया था, क्या हुआ?
पिटाई विटाई कर देते थे मेरी, मारते बहुत थे मुझे बचपन में, मैंने पिटाई बहुत खाई है चाचा जी से।
अच्छा?
हाँ, सभी से पिटा हूँ मैं, मम्मी से कम पिटा हूँ, दादी से भी पिटा हूँ, दादी से कम पिटा हूँ, लेकिन चाचा जी ने तो बहुत सुताई करी है। चाचा जी ने तो मुझे घेर घेर के, मतलब सही मारते थे वो मुझे, सही मारते भी सही थे, मैं बंदा ही गलत था बचपन में ना, बहुत ज़्यादा
बदमाश थे,
बहुत ज़्यादा, कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ पिटाई हो गई फिर चला गया, घर के कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब काम इन द सेंस कि 5 बजे दूध लेकर आना है, 5:30 लेकर आ रहा हूँ। दूध लाना होता था मुझे, और भैंस थी हमारे पास, तो भैंस का काम करना होता था मुझे, काम इन देंस भूस निहार करना, ये सब छोटी चीज़ें मुझे करनी, क्योंकि मैं अपनी माँ से नहीं कराना चाहता था वो सब चीज़ें, तो मैं करता था। तो जैसे तो मारते थे वो, पिटाई करते थे। फिर पढ़ाई में मैं ऐसे ही था, पढ़ाई में मैं पता नहीं क्या, मुझे बचपन में ही किसी ने क्या विज़न दे दिया था, मैं अलग ही तरीके से पढ़ाई करता था। मैं कहता था सिर्फ मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बस जानना है कि ये मेरे काम आएगा फ्यूचर में या नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे नहीं पढ़ना। चाचा कहते थे ऐसे तो कोई सी पढ़ाई नहीं होती, मुझे समझ ही नहीं आती है तेरी पढ़ाई। तो चाचा जी मुझे टास्क देकर चले जाते थे, जैसे वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, उन्हें पता है बैट बॉल खेलेगा, 20 तक पहाड़े लिखेगा, ABCD 30 बार लिखेगा। मैं 8th 9th क्लास में हूँ जब मुझे ABCD लिखवा रहे हैं, मुझे कोई वो दे जाते थे साइंस का लेसन कि भाई साइंस का लेसन है ये, तुझे करना है, क्योंकि उन्हें पता था ये निकल जाएगा, ये गोली दे देगा।
हाँ, वही करते थे आप?
और मैं कर दे रहा था,
तो पता होता था पिटाई भी होगी,
पिटाई होगी, मैं तैयार रहता था। मतलब मैं खेल रहा होता था तो मैं कहता था भाई जल्दी कर लो फिर मुझे पिटना है। कभी कभी बहुत अच्छा दिन चला जाता था, कभी मारते ही नहीं थे उस दिन। मैं कहता था भाई अच्छा कर दिया आज मैंने, फिर मैं सोचता था क्या किया, और पूजा करी थी आज मैंने, कल भी करूँगा। तो इस तरीके से फिर मैंने क्रिकेट वाली चीज़ को दबाया, मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार फैमिली बहुत बड़ी है तो मुझे सबको देखना है, अरेंज करना है, तो शायद ये क्रिकेट में कितना लंबा मेरा स्ट्रगल हो जाए, तो मैं कुछ ऐसी तलाश करता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, उसके बेस पर फिर मैं कोई नौकरी करूँ 9 से 5। बस वही मेरे को 12-13 उम्र में समझ में आने लगा।
वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब आप इतने सब मुश्किल हालातों में पलते बढ़ते हैं तो यूट्यूबर बनने का तो वैसे भी कोई नहीं सोचता, एक ये तो होता ही भाई एक सरकारी नौकरी या कोई ढंग की नौकरी लगे, ढंग से पढ़ो लिखो, वो प्रेशर भी तो रहा होगा आपके ऊपर।
हाँ, मैं हमेशा से सोचता था कि मैं नौकरी करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मैं अपने सुविधाएँ सोचता रहता था बस, कि अगर मैं नौकरी करूँ तो यार कुछ प्राइवेट ना करूँ, ऐसा करता हूँ मैं वकालत कर लेता हूँ। फिर मैं तरह तरह की स्कीम्स लगाता रहता था, मैं अपने आप से ही लगाता रहता था कि ये कर लूँ, अच्छा इसमें ये हो जाएगा, इसमें मुझे किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। मतलब मैं बड़ा रहा हूँ कि मुझे किसी के ऑर्डर पसंद नहीं है, बचपन से मैंने इतने ऑर्डर सुन लिए ना घर वालों के, तो मेरे को पसंद नहीं है कोई बाहर का मुझे कहे कि तुझे ये काम करना है।
अमित, आपके रैप में मैंने एक और चीज़ समझी कि फैमिली के लेवल पर इतना आप सब प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन क्लास में जाकर आप हंसी मजाक करते थे, टीचर्स मस्खरा कहते थे, और आप किसी के सामने कभी रोते नहीं हैं, ये मुझे पता चला, सारा दुख जो है वो अकेले हैंडल करते हैं, ऐसा क्यों?
मैं विश्वास रखता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपके दुख पे सब हंस पड़ते हैं, तो इसलिए मैं खुद तक ही रखता हूँ। कुछ तो आपको ऐसी चीज़ अपने तक रखनी पड़ेगी जो सिर्फ आप अपने से ही बात कर सके, आपको अपने से बात करने के बहुत सारे रीजन चाहिए, दूसरों से तो आप बात कर ही सकते हैं।
बचपन में भी कभी जब बच्चा जैसे चाचा से पिटाई हुई कुछ हुआ, कभी नहीं लगा कि दोस्तों के साथ शेयर करूं?
मैंने कभी नहीं, मेरे दोस्त यही कहते हैं कि बहुत छुपा रुस्ता मैं इन चीज़ों में, मेरी बहुत अलग इमेज है अपने दोस्तों में, कम उम्र से ही मुझे बड़ा वो मानते हैं कि भाई ये कुछ नहीं बताता, ये अपने तक रखता है, ये नहीं बताएगा आपको, कुछ भी नहीं बताएगा। आप मेरे दोस्तों से बात करोगे तो वो यही कहेंगे कि वो नहीं बताएगा कुछ भी आपको, मैं नहीं बताता, बस मैं सोचता हूँ कि ऑलरेडी यही इतने दुख, इसकी अलग कहानी चल रही होगी इसकी दुनिया में, चलती है। और वो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप किस तरीके से, आप भी यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका काम है ये आप कर रहे हैं, लेकिन आप भी किस वजह से अंदरूनी तौर पर परेशान होंगे ना, वो कहानी आप तक है। एक मैं अपनी बता दूँ तो मैंने 2-2 कहानियाँ बता दी आपको, थोड़ी अपनी परेशानी दे दी, देखो 5% तो आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे, आप सुनोगे अच्छा ये भी परेशान है, ओ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, ये तो मैं भी देख रही हूँ, मैं और परेशान हो जाओगे, तो खुद को ही कर लो, दूसरा को जीने दो।
क्या बात, इतनी बड़ी बात की। लेकिन क्या उस अपने उस दुख को छुपाने के चक्कर में ही आप क्लास में हंसी मजाक और जो मस्खरा टाइटल नाम मिल गया कि ये सब करते थे?
हाँ, क्योंकि आप जो रूप आपने अब बंद कमरे में कर लिया अपने साथ, अब वो बाहर नहीं ला सकते ना, कमजोर हो जाओगे आप दुनिया की नज़र में, और कमजोर को कोई टिकने नहीं देता। तो मैं तो बहुत लंबी इनिंग्स का खिलाड़ी था, तो मैं तो वैसे भी कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था कहीं पे, तो मैं हमेशा मजबूत रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अपनी चीज़ें मैंने वैलिड रखी जो भी थी, अगर मैं गोल्ड स्टार के जूते पहन रहा था और कोई नाइकी के तो मैं उसको बताता था कि गोल्ड स्टार के फायदे क्या हैं। तेरे में नहीं बता रहा कि तू जो पहन रहा है उसका नुकसान क्या है, लेकिन फायदा क्या है, तू मेरे फायदे सुन ले। तो मैंने हमेशा अपने आप को मजबूताई से पेश किया हर जगह, मैं कभी घबराया नहीं, और इसीलिए मैं हंसी मजाक करा करता था क्योंकि मुझे वो पसंद था, मेरे लिए वो इनर पीस था। चार लोग हंसते थे आपके साथ, जब कोई नहीं होता और पांच लोग आपको हंसते हैं तो आप बहुत अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, तो मैं हमेशा उसी खुशी में जिया।
तो वो कहीं ना कहीं अपने अपने दुख को छुपाने का तरीका था,
कह
जो शायद बाद में धीरे धीरे आदत बनता चला गया।
हाँ, मैं हूँ अभी भी ऐसा, मैं क्या चल रहा होता मैं किसी को नहीं बताता, मैं अपने में रहता हूँ, मैं अपने से बात कर, अपने ठीक है।
ये मुझे आपकी आदत बहुत अपने जैसी लग रही है। अब आते हैं उस फेज़ की तरफ, उस फेज़ पर जहाँ यूट्यूबर बनने का लगा होगा या कुछ भी क्रिएटिव साइड में जाना है, वो नॉर्मल एक नौकरी या कहीं पे कुछ नहीं करना है, वो दौर कैसा था? ग्रेजुएशन के दौरान समझ में आया कि क्या करना है?
मैं धीरे धीरे डबिंग तो डिजिटल की तरफ तो मैं 2013-12 में प्रभावित होने लगा था काफ़ी।
अच्छा, काफ़ी कम उम्र में?
हाँ, काफ़ी कम उम्र में, तो ये ग्रेजुएशन का ही टाइम था मेरा। मैं डबिंग्स करने लगा था, बॉर्डर की डबिंग्स, फिल्म उठाई और उसमें देसी लैंग्वेज फिट कर देता था, अरे इंग्या को, अरे कहाँ को जा रही है, ऐसे करके कि भैया मेरा तो एडमिशन होगा DU में, ओ भैया अब तो तू मौज काटेगा वहाँ जाके। तो ऐसी मैं डबिंग करता था और सब कहते थे तो ये क्या चल रहा है, फिल्म का सीन चल रहा है और पीछे आवाज किसी और की चल रही है, ये सनी देओल साहब की तो आवाज नहीं है, ये तो पीछे कोई और बोल रहा है।
तो आप आवाज भी कॉपी करते हैं?
मैं कॉपी नहीं करता था, मैं अपनी में ही बोल देता था। तो आवाज भी कॉपी नहीं करता हूँ और मैं कभी किसी का कंटेंट भी कॉपी नहीं करता, मैं कॉपी नहीं करता कुछ भी, ओरिजिनल जो है तो है, आपको पसंद है तो ठीक है, ना पसंद है तो फिर भी स्वागत है। हाँ जी।
और वो आपने अपना यूट्यूब चैनल तब वो शुरू किया था?
फेसबुक।
अच्छा, फेसबुक पे करते थे।
कोई मेरे को मैसेज करता था, आई एम योर बिग फैन, मैंने कहा फैन? मैंने कहा ये मेरा, मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, रिप्लाई भी करते हो? मैंने कहा भाई मैं तो कर देता हूँ यार। तो मेरे लिए बहुत ऐसा होता था,
ये 2012-13 की
बात है। 12-13 फिर मैं धीरे धीरे करता रहा, फिर एक एडले का गाना आया हेलो, तो बड़े आराम से ऐसे बोलती है हेलो, तो मैं लेटा हुआ था, मैंने ऐसी डब कर दिया, मैं इधर से बोलने लगा हेलो, तो वो उधर से बोलती है, फिर से वो बोलती है, वो गाना बड़ा स्लो है, आप सुनना उसको, हेलो
सुनो।
तो फिर मैं बोलता हूँ हेलो, तो वो कहती है हेलो, मैंने कहा नेटवर्क प्रॉब्लम है? तो फिर वो बोलती है हेलो, मैंने कहा देख ये नहीं चलेगा, सुबह सुबह फोन मिला दिया और हेलो हेलो बोले जा रही है, तो कुछ बोल, क्या दिक्कत है, क्या हुआ एडेले? फिर वो इंग्लिश में बोलती है लगातार जो भी उसका लाइन होती है, मैं कहता हूँ सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा, हिंदी में बात करनी हो तो फोन करियो, तो ऐसी कर दिया। तब कूल था, ये 2014-15 की बात है, तब ये कूल था, आज शायद मैं ना करूँ, फिर मैं सोचूंगा आज किस डेट में वो अमित नहीं हूँ, मैं सोचूंगा नहीं यार एक वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ी मेहनत से उसने अपना क्रिएटिव वर्क निकाला और आप उसके साथ ऐसे छेड़खानी कर रहे हो उसके कॉन्टेंट के साथ, अब नहीं करूँगा, लेकिन तब कर देता था, तब इतना दिमाग नहीं था, फिर मैं करता रहता था, करता सुकून मिलने लगा, खुशी मिलने लगी, लोग बातें करने लगे, अटेंशन मिलने लगी, अच्छी लगती है कम उम्र में बहुत अटेंशन, जब आपके सिर्फ तीन ही दोस्त हो ना और तीन दोस्तों के नाम भी ऐसे हों छोटू गोलू चिंटू, तो आपको कोई ऐसा बंदा मैसेज कर देना जिसका नाम सार्थक अवस्थी हो, तो आपको ऐसे लगता है सार्थक अवस्थी ने मैसेज किया है, अब तक तो चिंटू ही तारीफ करता था, अब सार्थक अवस्थी कर रहा है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। मैंने कहा यार कुछ तो बात है, और हमारी जो लड़कियाँ भी दोस्त होती थी तो उनके तो नाम भी रूपा ज्योति ऐसे होते थे, और फिर आपको कोई श्रुति मल्होत्रा बोल दे यार आप तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, अरे यार कुछ तो बात हो रही है, इंटरनेशनल मामला जा रहा है ना, तो मुझे ये फील होता था उस टाइम पे कि भाई मैं कुछ बढ़िया ही कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी प्रभावित था अपने देसी सरकैज़्म से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि मैं एक दोस्त था मेरा, उसके बड़े भाई के रिश्ते की बात चल रही थी, तो उसने बोला मैं अभी नहीं करूँगा शादी चाहे कुछ हो जाए, अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है, तो पीछे दादा बैठे थे अपना आराम से रोटी खा रहे हैं, उन्होंने किसी से नजर नहीं मिलाई, कह रहे तो लड़की से ही तो शादी कर रहे हैं, बंदरिया से थोड़ी ना कर रहे हैं, जो आती तेरी किताबों को फाड़ के खा जाएगी,
वो तो एकदम नॉर्मल बात,
तो मैं इससे बड़ा प्रभावित था। मेरी दादी गुस्सा हो जाती है ना किसी से, तो आपने उनको बोला दादी राम राम मैं ना ले रही, कि राम राम ही ना ले रही मैं इससे बहुत प्रभावित था सरकैज़्म से ना, तो क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं, वर्ड बहुत अच्छे अच्छे हैं, हैकर्ड भाई बहुत हैकर्ड हो रहा है, मैं आपको
मतलब हेकड़ी दिखाने वाले को
नहीं, हैकर्ड मतलब कैडी चीज, मतलब जैसे आपको कोई क्या बोलेगा कि यार आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे बात करेंगे, लेकिन अपने उसमें कि भाई कतई जहर लग रही है तो ये मैं बहुत मैं कहता हूँ कि बात ही नहीं करता कोई।
सही बात है,
लुकिंग प्रीटी और
लुकिंग
ब्यूटीफुल में ज्यादा फंसे हुए हैं लोग। तो मैंने सोचा ये बातें बोलते हैं, बातें करते हैं अपने वहां की गलियों की बातें करते हैं,
और वो वहां का बच्चा, वहां का युवा भी तो कंटेंट देखना चाह रहा है ना अपने तरह का। तो लेकिन ये जो शुरू का आपका काम था, ये वही कंटेंट था जो फिर एक बार सब उड़ गया था आपका? हाँ, कंटेंट ये वही था
ना, फेमस हुआ मैं, उड़ा दिया उन्होंने, फेमस हुआ।
तो यूट्यूब से या फेसबुक?
फेसबुक से गायब हो गया था, यूट्यूब पर तो डाल ही नहीं,
तब तक आए नहीं,
यूट्यूब तो वैसे ही उड़ा देगा, यूट्यूब तो काफी स्ट्रिक्ट है इन चीजों।
तो जब आपके इन वीडियोस को व्यूज मिलने लगे तो ये सारा कंटेंट उड़ गया।
हाँ, तो उन्होंने पहचाना कि बहुत आते थे उस टाइम पर, जियो वियो कुछ भी नहीं था और 5-5 मिलियन जाते थे, 5 मिलियन था ही नहीं उस टाइम पर इंटरनेट लोग होता कितना।
ये 5 मिलियन व्यूज आपकी शुरुआत 2013-14 में हो गई? ओ माय
गॉड, वो बहुत पर वो था उसमें, आप उसे देखोगे ना तो एमिनम गा रहा है, एमिनम गा रहा है और पीछे गाना चल रहा है 26 की पैमाइस ले रही, 5-6 की हाइट, वो इतना जबरदस्त लेवल पे मैचिंग हो रखी है, लोग कह रहे हैं ये एमिनम गा रहा है, देसी गाना हरियाणा का गा रहा है, और हरियाणा के गाने बूम हो रहे थे तब उस टाइम पे, मतलब हरियाणा के गाने लोग सुन रहे थे और एकदम से लोगों ने देखा यार हमारे गाने डाल रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लगता था।
तो कैसे सब करते थे, इतने पैसे थे आपके पास?
कुछ भी नहीं, मेरा एक दोस्त था उसका फोन, उसके पास 2 फोन थे, तो वो आईफोन उसका ऐसे ही पड़ा रहता था, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर था आई मूवी, तो मैं कहता था यार मुझे दे दे, तो सपोर्टिव बहुत रहा, तो उसने कहा कि ले ले, मैं उसी में करता था।
ओह माय गॉड,
तो मैं जैसे मेरे को कोई साउंड भी कुछ ऐसे करना होता था तो मैं मुंह से ऐसे बोल के, या कुछ जैसे कुर्सी की आवाज़ आनी तो कुर्सी ऐसे कर देता था और उसमें रिकॉर्ड कर लेता था, गेट की आवाज़ डालनी होती तो गेट को ऐसे मार देता था तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेता था, उसमें सेव कर लेता था, फिर उसको डाल देता था एडिट पे। 7-7, 8-8 घंटे लगते थे, काफ़ी मतलब उसमें टाइम लगता था, गर्मियों में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि आपको पंखा नहीं चलाना होता, पंखे की आवाज़ आएगी तो बिल्कुल भाई सब पसीने निकल रहे हैं सारी चीज़ें। तो मैं अपना कच्चा बनियान में ही रहता था, मैंने कहा भाई मैं टी शर्ट वीशर्ट भी नहीं पहनूंगा कि और गर्मी लगेगी, तो वो 6-7 घंटे घर वालों को लगता था लड़का बहुत तकड़ी पढ़ाई कर रहा है।
अच्छा, मैं पूछने वाली थी कि इसमें पिटाई नहीं हुई कि
ये पता नहीं लगा
पढ़ने लिखने की?
चालू बनी है ना यहाँ पे आके, मैं जब चालू अमित नहीं था, वो वाला
कॉलेज में
था वो वाला अमित, तो बचपन वाला अमित तो सादगी में जीवन बिता दिया उसने तो अपना आराम से, ये वाला अमित तो अब चालू हो गया था, दुनिया जारी देख रहा था, उसको धोखे मिल रहे थे, मौके मिल रहे थे, तो वो परख रहा था, तो चालू हो रहा था, वो घर वालों को भी बेवकूफ बना रहा था ना कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ मम्मी, ठीक है बेटा, वहाँ जाके डबिंग पेल रहा है लोंडा।
ओह माय गॉड, और किसी को कोई कानो कान खबर
है? पता ही नहीं लगा, शुरू के 2 साल तो कुछ पता ही नहीं था कौन क्या क्या, जब यूट्यूब पे भी 3 महीने बाद पता लगा।
अच्छा,
जब लोगों ने उनको बोला ना आपके लड़के के साथ फोटो कराने, आपके भतीजे के साथ कराने, क्या बात क्या कर
दिया, ऐसा क्या कर दिया,
तो उनको बताया कि वीडियो बनाते हैं ऐसे ऐसे, उन्होंने देखी, फिर मैंने फेस नहीं किया चाचा जी को 3-4 महीने, मैं जाता ही नहीं था उनके सामने
क्योंकि डांट तो उसमें भी पड़ सकती है।
मुझे ये था कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, एमए कर ली थी मैंने, लॉ कर ली थी मैंने, कि अब तो कमाने की उम्र है, अब तो कमा के देगा, लड़का हो गया 23-24 साल का, अब तो कुछ करेगा ये,
और ये इसने यूट्यूब
चला दिया।
शुरू में तो वो डिसअपॉइंट हुए होंगे, ऐसा नहीं कि शुरू में ही खुश हो गए होंगे कि बाबा बहुत अच्छा काम कर रहा है।
शायद हम मिडिल क्लास में ना एक दिक्कत रही कि हम मिडिल क्लास हमने बोल दिया लेकिन हम कभी क्लास नहीं ला पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि समझने में इसलिए हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, हमें सब बोल देते हैं मिडिल क्लास, लेकिन अगर हम उस क्लास को समझ जाएं तो फिर बात ही अलग हो जाए।
सही बात है।
हाँ जी,
तो अभी खुश हैं लेकिन चाचा और मम्मी?
सभी खुश हैं, अभी तो सब खुश हैं, अभी तो प्राउड फील होता है उन्हें, उन्हें भी वही अच्छा लगता है कि जब कोई बोलता है कि गाली नहीं देता ये।
अच्छा, ये जो आप कॉलेज के दौर की बात कर रहे हैं, आपके गाने में एक और बात का जिक्र है जो मुझे लगा ज़रूर हमें करनी चाहिए कि आप उस समय बिगड़ गए थे।
हाँ जी।
क्या क्या कर रहे थे, क्या आपको नशे की लत लगी थी, क्या हुआ था, आज मैं जानना चाहूँगी।
मैं अपने पूरे करियर में 26-27 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने आज तक कभी स्मोकिंग ड्रिंक, हाँ मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ, बहुत पूजा पाठ करने वाला भी लड़का हूँ, मैं पूजा बहुत करता हूँ, कर्म में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ।
जो फिर उस दौर में क्या हुआ था?
काफ़ी चीज़ें हो जाती है, जवानी होती है, वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो तो जवानी की चीज़ें थी, कॉलेज में थे, मौज मस्तियाँ करते थे, कॉलेज राजनीति में थे, महिलाओं में मित्रता करते थे, फिर एक से ज़्यादा भी महिलाओं से मित्रता हो जाती थी तो उन्हें पता लग जाता था।
नशा वगैरह से, क्योंकि मुझे वो देखकर ऐसा लगा कि शायद ये आपकी जिंदगी का ये पहलू रहा है क्या?
मेरे यार दोस्त यही कहते हैं कि ये इन चीज़ों से दूर रहा तो शायद इसीलिए ये लंबी इनिंग का खिलाड़ी है।
इन चीज़ों के वजह से क्या होता है, सक्सेस आ तो बहुत जल्दी सकती है लेकिन उतनी जल्दी जा भी चली जाती ही है, सकती नहीं है।
मुझे सब कहते हैं कि तू यूट्यूब में दोस्त नहीं बनाता, मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने कम उम्र में बहुत दोस्त बना लिए, मुझे नए लोगों की तलाश नहीं है अभी, मुझे नए। अच्छा, मेरा एक मानना है कि जब आप सफर में होते हो तो आपको रास्तों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
क्या बात है।
तो मैं रास्तों से दोस्ती नहीं करता, सफर यूट्यूब है, यूट्यूब के लोग हैं, मैंने उनसे दोस्ती कर रखी है, जितने भी चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे कोई, वो रास्ते में है, वो रास्ते हैं ना, वो भी अपने एक सफर में है ना, तो मेरे को उनसे मित्रता नहीं करनी, मेरे को लोगों से सीधी बात करनी है। तो मैं इस वाले
अपनी ऑडियंस को आप ध्यान में रखते
हैं, बस मैं और ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता।
बहुत बढ़िया।
यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा शोर शराबा, जहाँ गाने चल रहे हों, लाइट्स कम हो, मैं नहीं रह सकता, मुझे लाइट्स चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं। जी पास्ट में खुद इतना अंधेरा देख कर आए, इतनी चीज़ें देख कर आए, अब तो थोड़ा उजाला चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो जब हमारा करियर ब्राइट है तो हम
अंधेरा क्यों करें। अच्छा, अब समझते, आपका वो फेसबुक से सारे वीडियोस उड़ गए, अब अगेन आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करना है, भाई लॉ या जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें कुछ करना है, तो वो मुकाम कैसे आया, वो मोमेंट मैं चाह रही हूँ समझना कि अच्छा यूट्यूब चैनल खोल के देखते हैं।
वो जब वहाँ पर कुछ नहीं था तो प्लेटफॉर्म की तलाश थी। अच्छा, कलाकार कला से कार को चलाता है ना, ये कलाकार की खासियत है ना। आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया लेकिन आप कल को ये सोचने लगो कि मैं नहीं लूँगी अमित का इंटरव्यू तो कोई और ले लेगा, या मैं सोचने लगू मैं इनको इंटरव्यू नहीं दूंगा तो कोई और ले लेगा। तो कला को तलाश रहती है, फेसबुक ने पूरी नहीं करी तो यूट्यूब ने पूरी करी, तो ऐसे मैंने यूट्यूब किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा यार।
और अब तब तक ये ध्यान आ गया था कि अब यही करना है।
हाँ, मेरा सौभाग्य यही रहा कि मैं पहले दिन से ही रहा सुर्खियों में, कि लोगों ने पहचाना कि हाँ कुछ नया है, क्योंकि जब घर घर इंटरनेट जा रहा था तब इंटरनेट इतना बूम हो रहा था उस टाइम पे, एक चीज़ चल रही थी कि हाँ यार इंटरनेट बूम हो रहा है, तो और एकदम से एक लोग बात कर रहे थे कि हाँ यार एक देसी सा लड़का है, सांवला सा दिखता है, पतला सा है, कुछ इतने खास लुक्स भी नहीं है लेकिन बातें सुनो बड़ी लंबी लंबी मार रहा है। जैसे आप हो ना वैसे ही आपके फैंस होते हैं। अगर आप टॉक्सिक बातें करोगे तो आपसे टॉक्सिक लोग ही जुड़ेंगे।
बहुत सही बात।
जैसे आप खुद हो वैसे। मैं कभी कभी किसी से मिलता हूँ तो वो अपनी बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी बताता है मुझे, तो मैं उससे कहता हूँ यार ये फैन है मेरा, ये जुड़ा ही मुझसे इसलिए क्योंकि इसने मुझे इंस्पिरेशन के तौर पर देखा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई बहुत ही नेगेटिव आदमी हो और उसके साथ निराई पॉजिटिव आदमी कोई जुड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि वाइब अलग हो गई तो इंसान फिर वो नहीं जुड़ पाता उस तरीके से।
ये बहुत अच्छी बात कही आपने वो कंटेंट क्रिएटर्स के एंगल से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस में हम सेम प्रोफेशन में हैं। तो जब आपने अमित कंटेंट बनाना शुरू किया तो एक हम कहते हैं ना कि एक हम अपना टारगेट ऑडियंस तैयार करके चलते हैं कि भाई ये लोग मुझे देखेंगे और मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझे नहीं देखेंगे। आपके दिमाग में आपकी टारगेट ऑडियंस क्या थी, किसको आप टारगेट?
मैंने हमेशा मास ऑडियंस को टारगेट किया, गली 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 को, हमेशा मैंने गली मोहल्ले गांव हमेशा, शहर में ही गलियां आती हैं, शहर में ही मोहल्ले आते हैं, गांव फिर गांव हो जाता
है, शहर में भी गांव से आए हुए लोग होते हैं,
होते हैं और मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, जैसे दिल्ली में लोग कितना प्यार करते हैं, मतलब आप कभी दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे कौन से एरिया आप गिन सकते हो, ग्रेटर कैलाश है ना, धोला कुआ, मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस मैं जाता हूँ, लोग इतना प्यार करते हैं, तो वो तो गांव से नहीं आ रहे ना कहीं से, वो शहर में ही रह रहे हैं लेकिन वो भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, कोई अपना दायरा बना लेता है कि हाँ भाई ये रीजनल कॉन्टेंट है इसका, तो इसको सिर्फ गाँव के लोग देखते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने बारे में पता है कि मुझे ये देखते हैं। लेकिन मैंने कभी ऑडियंस को टारगेट नहीं किया कि मुझे इनके लिए ये बनाना है, मुझे उनके लिए वो बनाना है। देखो मैं हलवाई नहीं हूँ, कि 5,000 लोगों का खाना है, रसगुल्ले में मीठा कम मीठा ज़्यादा, ये इधर इनके लिए शुगर फ्री नहीं, मैं हलवाई नहीं हूँ, तो मैं कलाकार हूँ, मैं कुछ भी बनाऊँगा, मुझे भी नहीं पता क्या हिट करेगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या
कौन देखेगा कौन नहीं। अब लेकिन जैसे उस बात का आपने जिक्र भी किया है अपने उसमें, और जो कि बहुत होता है हमारी सोसाइटी में, जो बहुत अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं वो हिंदी मीडियम वालों को अपने से नीचा समझेंगे या हिंदी बोलने वालों को, और आपने कहा भी कि कहीं पर एक यूट्यूबर्स जो थे आपका मजाक उड़ाया गया, उस एक चैलेंज से आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब कड़वा सच है अमित ये, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी बोलने वाले को डाउन मार्केट, LS और आजकल की तो बहुत स्लैंग्स मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे यही सब इस्तेमाल होते हैं, हमारे टाइम पे भैया जी बहन जी कह दिया जाता था, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं, इससे कैसे लड़ता है एक व्यक्ति?
देखो वो एक पुराना दौर था और वो एक पुराना टाइम था, मैं आया था तो मजाक उड़ता है आपके कपड़ों से लेके हर चीज़ का मजाक उड़ता है, ये सोसाइटी कहती है कि आप कपड़ों से जज मत करो, शक्ल से मत जज करो, लेकिन
करती है,
सोसाइटी को चलाने वाले करते हैं। अब जब यूट्यूबर जज कर सकते हैं तो सोसाइटी, तो भाई आपको, आप जज कर रहे हो, आपको 50,000 लोग देख रहे हैं, आप जज कर रहे हो तो आप सोसाइटी को ही तो चला रहे हो ना, क्योंकि 50,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे, मैं कुर्ते पजामे पहनता था वीडियोस में, तो ऐसी बातें करता था, तो काफ़ी इन चीज़ों पर काफ़ी सवाल,
बहुत लोकल डायलेक्ट था आपका, देसी भाषा,
देसी था, तो इस पर बहुत मजाक उड़ता था, मेरे को बताते थे लोग, लेकिन ठीक है वो मेरा बोला, मुझे मैंने काम से जवाब दे दिया, वो भाई जहाँ होंगे मैं जाऊँगा, अब लेकिन मैं अभी उस सिचुएशन पर हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, मैं खुश रहूँ, बढ़िया, वो मैंने बहुत टाइम पर बोला, बहुत टाइम पहले बताई थी वो बात, वो निकल गई, मेरे लिए अतीत हो गया वो, लेकिन लड़ना चाहिए, जब आपको लोग बोलें गलत तो आपको खड़ा होना चाहिए, आप कब साबित करोगे है? आप कब साबित करोगे कि आप हर सिचुएशन में खड़े हो सकते हो? ऐसे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे ना, आपको कोई भी कुछ बोलेगा आप खुद तक रखोगे, आपको स्टैंड लेना होगा।
आप गए उस समय डिप्रेशन में? आपको
नहीं, मैं कभी नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ कभी कोई पहुँचे, मैं कभी नहीं जाता, मैं उदास रहता हूँ, उदास 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, वही है ना, फिर खुद से बात कर ली कि आजा मैदान में, आजा लपेट दे सबको, तो लपेट देता हूँ मैं फिर।
बट जो लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं या गिराने की कोशिश करते हैं, या उस समय जो आपसे बहुत बड़े रहे होंगे उन्होंने नीचा करने की, वो सब कोशिशें तो हुई होंगी आपके साथ?
कंपटीशन है, वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन वो पीछे खींच रहे हैं क्योंकि वो पीछे हैं जी।
कभी आप परेशान नहीं होते?
हो जाता हूँ परेशान, इंसान को होना चाहिए, खुश कब तक रहेगा, तो इसको ही तो बैलेंसिंग कहते हैं ना, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा हंसना थोड़ा रोना, थोड़ा खाना पीना फिर सो जाना, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। अच्छा समय की खासियत क्या होती है कि समय बीत जाता है,
चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो बीत जाता
है, लेकिन लोग एक बात, ये कोट हमेशा लोग पढ़ते हैं लेकिन एक नहीं पढ़ते, समय को भी समय दो।
क्या बात है,
तो समय को समय देना होता है।
पता है हमें इतनी कम उम्र में बहुत बहुत मेच्योर बातें आप कर रहे हैं, बहुत बड़ों जैसी, कि आप हमेशा से ऐसे थे या अभी पिछले कुछ साल में हो गए, इतना बड़प्पन कहाँ से आया?
पता नहीं, आप बता सकते हो, मेरे साथ वाले बता सकते हैं।
हालांकि तो, आपके साथ वाले कहते हैं आपके साथ बैठते हैं तो हमेशा हंसते रहते हैं।
हाँ मजाकिया मेरा स्वभाव है, मजाक तो मैं करता रहता हूँ,
लेकिन उस मजाकिया के पीछे मुझे एक बहुत गंभीर इंसान दिखाई दे रहा है।
गौतम गंभीर सर? नहीं गंभीर, हाँ ठीक है, लाइव है ये, ऐसे आपको बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके साथ बीती है, जो आपको चीज़ें हुई है आपको जहन में रखनी पड़ेगी। टूटना बहुत जरूरी है, जब तक आप टूटोगे नहीं तो जुड़ोगे कैसे।
कुछ मैसेजेस आपके लिए, सरप्राइज मैसेजेस आए, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ।
हाय मेरा नाम अधीश वर्मा है,
अरे यार।
और मैं पिछले कुछ सालों से अमित भाई के साथ जुड़ा हूँ, और एक बात मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में कि मान लीजिए कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है और उस कमरे में एक कोने से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि उस कोने में अमित भड़ाना साहब बैठे हुए हैं। बहुत कमाल के इंसान है, बाहर से मस्खरे जैसे ये खुद को बना के रखते हैं, ऐसी इमेज ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पर अपने दिल में इन्होंने जो जो चीजें छुपा के रखी हैं, जो डेप्थ इनके इमोशंस में है, इनकी सोच में है, वो जब आप इनसे अकेले में बैठ के कभी बात करें तो आपको समझ में आती है। और जिस इंसान में खुद बहुत टैलेंट होता है वो दूसरों के टैलेंट की भी बहुत कदर करता है, और ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाती है जब आप अमित भड़ाना के साथ काम करते हैं।
अरे भाई थैंक यू आदेश भाई, थैंक यू सो मच। ये तो आपने ये क्या अच्छा और भी हैं।
नमस्कार, मेरा नाम धीरज है और मैं पिछले 4 साल से अमित जी का बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ। मैं अमित के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस रहते हैं। जिस दिन उनका वीडियो शूट स्टार्ट होता है और वीडियो शूट ख़त्म होने तक इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम को लेकर कि उनको ये नहीं पता रहता कि भाई सोना कब है, खाना कब है, उठना कब है, किससे बात करनी है। कंटिन्यूसली वीडियो शूटिंग में लगे रहते हैं और जो उनकी मेहनत है वो वीडियो के अंदर दिखती है जब वीडियो पब्लिकली पब्लिश होती है यूट्यूब पर। बट इतनी मेहनत करते करते उनको ये नहीं पता रहता कि उनकी जो सेहत है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। तो मैं भाई इस वीडियो के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि भाई अमित, मेहनत ज़रूरी है बट उससे पहले सेहत ज़रूरी है। सेहत नहीं तो मेहनत नहीं। तो भाई सेहत का ख्याल रखो और प्रोग्रेस करते रहो।
मैं भी भाई आपसे ये कहना चाहूँगा, आप भी पेमेंट टाइम पे कर दिया करो, बिजनेस हैंडल करते हो तो।
मुझे याद है जब मैं पहली बार अमित से मिला था, हम लोग 5-6 जने एक रूम में थे और भाई साहब हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी पूरे रूम में। और उस हंसी का सोर्स, यू गेस्ड इट, वाज अमित। तो अमित के साथ ये चीज मैंने नोटिस की है कि अमित को फनी बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब उसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो कहीं से सीख कर या देख कर नहीं आता है, वो इंस्पायर नहीं होता है। अमित एक्चुअली फनी है, अमित इनहेरेंटली फनी है। और सबसे बड़ी बात, अमित को लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। आई थिंक अमित को ना वो एक इनर पीस मिलता है जब वो लोगों को हंसा रहा होता है, और आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल थिंग्स दैट एनी पर्सन कैन हैव। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अमित आज जहां है वहां पर उसे होना चाहिए था, वो डिजर्व करता है। और भगवान करे ये सिलसिला हमेशा चलता रहे और अमित हम सबको हंसाता रहे।
थैंक यू सो मच।
एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए।
अमित भड़ाना के बारे में मैं क्या बोलूं? किसी ने सही कहा है कि अगर आप खुश रहते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से अगर लोग खुश रहे तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अमित की सबसे अच्छी बात यही है। और एक चीज जो इसको सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है इसकी जर्नी, इसकी यात्रा। ट्रस्ट मी, जिस बैकग्राउंड से आके आज इस बंदे ने जो जो काम किया है, फेमस बनना, कॉन्टेंट क्रिएट करना आसान होता है, लेकिन उस काम से लाखों लोगों को इंस्पायर करना कि वो भी ये कर सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और ग्राउंडेड रह सकते हैं, बिना गाली गलौज के, बिना किसी वाहियात चीज के भी ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, वो करना बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम में 2021 में अगर कोई बंदा उसको सक्सेसफुली कर रहा है, यू आर द मैन अमित। और ये मेरे को लगता है ट्रेलर है, लोगों ने अभी असली पिक्चर नहीं देखी है। और आपकी जर्नी से उनको सीखना चाहिए कि किस बैकग्राउंड से बंदा कहाँ आज पहुंचा हुआ है। और चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं अमित को पहली बार मिला तो अमित ने ये कहा था कि भाई मैं बस में ट्रैवल करता था और 5 रुपए की टिकट में वो लीड वाली, क्या बोलते हैं, छोटी वाला, छोटा वाला मोबाइल फोन होता था, कीपैड वाला, उसमें हम लोग लगा के बहुआ सुना करते थे। और फिर मैं अमित का इंटरव्यू ले रहा था तो अमित ने बोला ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो ट्रस्ट मी, वही मैं कह रहा हूँ, ये ट्रेलर है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, बहुत धमाका करना है। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना। जय हिंद मेरे भाई।
थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। बहुत रौनक भाई तो शुरू से बहुत प्यार देते हैं और हमेशा से ये आपके लिए रहता है जब आप किसी को देखते हैं, सुनते हैं और फिर आप उनके साथ काम करें, अच्छा लगता है आपको। रौनक भाई उनमें से एक हैं, अक्षय कुमार सर, अजय देवगन सर, तो ये काफ़ी स्पेशल लोग हैं लाइफ में जिनके साथ मैंने काम किया और जिन्हें मैं देखता हूँ। अभी मैंने बादशाह भाई के साथ भी, पाजी के साथ भी काम किया, तो ये इनको मैं सुनता था और वो करते थे और अब ये साथ में काम करते हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं।
कभी अमित, जब इतना सक्सेस मिलता है तो जैसे हम कह रहे थे ना, कोई भी दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी मन में ये इनसिक्योरिटी या डर आता है कि वॉट इफ वन डे आई वेक अप टू सी कि ये सब कुछ नहीं है, क्या ये सब एक सपने की तरह चल रहा है और एक दिन टूट जाएगा, जैसे आपने कहा सपने टूटते रहने चाहिए, अब वो डर है मन में?
मैंने जब इंटरव्यू शुरू हुआ था मैंने आपको तभी बोला था कि मैं, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
पहले नहीं था, अब तो है।
अगर देखो, मैं कोई भी चीज़ जबरदस्ती नहीं करूँगा, मैं उनमें से नहीं हूं कि मुझे दिखे कि अब मैं एफर्ट्स जबरदस्ती के लगा रहा हूं। मेरा यह है कि मैं जब मुझे लगेगा मैं नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, मैं अपना आराम से जमीन लूँगा, वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करूँगा, आराम से मैं वहाँ चला जाऊँगा। मुझे मेरे गोल अलग हैं, मेरा एम अलग है, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मैं भाई लोग जन जन मेरे बारे में बातें करें, नहीं, मुझे जन्म जन्म तक याद रखा जाए, जन जन तक ना पहुंचूं, मैं जन्म जन्म तक पहुंच जाऊं।
और ऐसे ही जीना है जैसा है, जैसे जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। चलिए आखिर में अब फ्यूचर प्लान्स की, मुझे थोड़ा कहीं रिसर्च में हम बातचीत करते हैं तो मुझे बताया गया कि अमित अगले 3-4 साल की प्लानिंग अपने काम की सबकी तैयार रखते हैं।
किसने बताया आपको?
अब एक पत्रकार अपना सोर्स नहीं बताता। अच्छा, तो आपके अगले 3-4 साल बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो मैं अमित को कहाँ देखूंगी?
आप कहीं देखें या मुझे ना देखें, बस आप इतना ध्यान रखें कि जिस व्यवहार से मैं आज आपसे मिला था, क्या मैं उसी व्यवहार से उन दिनों मिलूं, तो आप मुझे बत कहना। आप मेरी अचीवमेंट पर मुझसे कभी ना मिलना, आप मुझसे मेरे व्यवहार पर ही मिलना। अगर मैंने अचीवमेंट मैंने दुनिया भर की पाली और व्यवहार मेरा और बेकार हो गया तो मैं कुछ नहीं सीखा, मैं नंबरों में फंस गया। तो जब मैं आपसे मिलूं तो आप मेरी अचीवमेंट मत देखना, आप ये देखना कि अमित मैं पिछली बार तुमसे मिली थी
तो
आप कैसे थे और आज भी आप वैसे ही हो या आप उससे बेटर हो गए हो। इंसान बेहतर हो ये बहुत ज़रूरी है ना, कामयाब हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
अमित आज चलते चलते करोड़ों आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आपके व्यूज़ करोड़ों में जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चे खासकर युवा जो आपको देखते हैं उनमें से भी कोई बच्चा होगा जिसने अपने पिता को खो दिया होगा, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके सपने टूट रहे होंगे, कुछ करना चाहते होंगे, डिजिटल मीडिया में आना चाहते होंगे, उन सब बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखो एक बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है, और ये है कि आप किसी के जैसे ना बने, आप अपने जैसे बने। जब अमित कोई कहता है कि मुझे अमित भड़ाना भाई आपके जैसा बनना है, तो मैं कहता हूँ अमित भड़ाना बन गया ना अमित भड़ाना, अब आप अपने जैसे बने। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पहचानें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर नहीं पहचान पा रहे तो समय दें। और एक बात मैं बस जाते जाते कहना चाहूँगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो आपका पिछला हफ्ता बहुत बेकार गया होगा, बहुत नॉर्मल गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया होगा। तो आज इस इंटरव्यू के बाद उसी जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है कम से कम 2-3 हफ्ते और दें। ये ना सोचे 7 दिन खराब हो गए ज़िंदगी खराब हो गई, अभी 20-21-25 दिन और दें चीज़ें सुधरेगी, थोड़ा समय लगता है। अपने आप को पहचानें, असली रहें जो आपको दिखता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस संस्कार पर पले बड़े हो ना उस संस्कार को हमेशा फॉलो करो। कहीं नई जगह जाते हो, नई तरह के लोग देखते हो, वो देखते हो तो घबराए ना, वो जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से, आपको जो करना है अपने हिसाब से करना है, तो आपको अपना चलाना है, जो वो चला रहे हैं उनको वो चलाने दे। लाइफ रेस है तो हम भी रेसर हैं भाई, भागेंगे कोई बात नहीं, उसैन बोल्ट की तरह नहीं भाग पाएंगे लेकिन उनके आसपास तो भागेंगे हमेशा। थैंक यू।
क्या बात है। अच्छा आज एक बात मुझे कहनी होगी अपने सारे व्यूअर्स से कि जो लोग अमित भड़ाना के वीडियोस देखते हैं, उनके कॉमेडी वीडियोस हंसते और हंसाते देखते हैं, उन्हें आज अमित भड़ाना का एकदम एक नया अवतार देखने को मिला होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा अमित आपसे बात करके, और बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत तरक्की करें, और उम्मीद करूंगी जैसा आपने कहा जब अगली बार आपसे मिलूं तो ऐसे ही मिलें जैसे आज हम मिले हैं। अमित कुछ छोटे छोटे तोहफे हम लेकर आए हैं आपके लिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर ऑल दैट।
बहुत बढ़िया, मुझे फ्री की चीजें बहुत पसंद है।
जो देखा मैंने पा लिया YouTube के थ्रू, नया परिवार है बना लिया। कंटेंट फ्रेश था मैंने बनाया देसी कंटेंट, जो देश से जुड़ा देसी देख देसी सब था बनने लगा।
इस इंडस्ट्री का कल्चर ही कुछ ऐसा है, ये उगते सूरज को सलाम करते हैं। जब मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए था तो मेरा अच्छा वक्त भी काम के लिए ही होगा।
ज्योति पहले नफरतें, ज्योति पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया।
मेरे सभी चाहने वालों को दिल से शुक्रिया और प्यार, ना चाहने वालों को भी बहुत सारा प्यार। आपका अपना अमित बढ़ाना।